पेज नंबर 24। भारतेंदु युग हिंदी नए चाल में ढली। भारतेंदु एक युग पुरुष थे, राष्ट्र के निर्माता थे, प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, समाज सुधारक थे और एक राष्ट्रद्रष्टा भी थे। उनकी संगठन शक्ति भी अद्भुत थी, उत्साह की वे मूर्ति थे। कितनी कर्मठता थी उनमें, इतने अल्प समय में इतना अधिक निर्माण और सृजन का कार्य करना किसी आत्मिक अथवा दैवी शक्ति का ही काम लगता है। मेरे सहपाठी डॉक्टर लक्ष्मी सागर लिखते हैं, वास्तव में भारतेंदु की अल्पायु को देखते हुए उनका महान साहित्यिक कार्य दैवी शक्ति से प्रेरित ही कहा जाएगा। राधाचरण गोस्वामी ने अपने नव भक्त माल सन 1886 में इन्हें 64 कला प्रवीण कहा है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी लिखते हैं, इनकी प्रतिभा सर्वतोन्मुखी थी। इन्होंने हिंदी साहित्य की अमूल्य सेवा की और कुल मिलाकर 175 छोटे मोटे ग्रंथ लिखे। अतः यह युग प्रवर्तक कहे जाते हैं हिंदी भाषा और साहित्य। भारतेंदु नव जागरण के प्रतीक थे। इस युग में दो महापुरुष हुए, एक थे स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से 1883, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। दूसरे थे हमारे भारतेंदु जी, जिन्होंने आर्य समाज की मूर्ति पूजा विरोध संबंधी विचारों को अमान्य माना, पर अन्य सुधारों में आर्य समाज की स्थापना के पूर्व ही वे काफी आगे बढ़ चुके थे। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज अथवा आर्य समाज के धर्म के प्रचार के लिए आर्य भाषा हिंदी को अपनाया और भारतेंदु ने आर्य संस्कृति साधना साहित्य के अभ्युत्थान एवं राष्ट्रीय चेतना के लिए हिंदी को साहित्य और समाज में उचित स्थान दिलाया। राजा शिव प्रसाद, जिन्हें सितारे हिंद का खिताब मिला था, सरकारी नीति के कार्यान्वयन के लिए हिंदी को छोड़कर उर्दू की ओर झुक गए और फारसी प्रधान उर्दू शैली में उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया। उस समय सरकारी नीति अथवा सरकारी अधिकारियों की नीति का विरोध करना साधारण काम ना था, लेकिन हरिश्चंद्र ने राजा शिव प्रसाद को गुरु समान समझते हुए भी उनका डटकर विरोध किया और यह विरोध भी इन्होंने इतने सुसंगठित ढंग से किया कि समस्त उत्तर भारत ने हिंदी के पक्ष में एक स्वर से आवाज़ बुलंद की। कितनी ही पत्रिकाएं निकलीं, कितनी ही सभा सोसाइटियां बनी तथा कितने ही मेमोरियल सरकार को भेजे गए। 1882 पत्र पत्रिकाओं में हिंदी पक्ष के समर्थन के लिए लेखों की बाढ़ सी आ गई। इस चतुर्मुखी सक्रियता का फल हुआ कि हिंदी, यद्यपि इसे वह प्रोत्साहन राज्य से नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, निरंतर उन्नति करती गई और भारतेंदु तथा उनके सहयोगियों के प्रयास से केवल 12 वर्षों 1873 से 1885 में अपने बल पर खड़ी हो सकी और उसके साहित्य में इतनी वृद्धि हुई कि वह अपने युग की एक संपन्न भाषा बन गई और सरकार को सन 1900 में मालवीय जी के प्रयासों से अदालत में हिंदी तथा नागरी लिपि को भी व्यवहार में लाने का आज्ञा पत्र निकालना पड़ा। हिंदी ही हमारी भाषा है, उर्दू नहीं। पत्रिकाओं ने हिंदी के निर्माण तथा हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत योग दिया। भारतेंदु ने स्वयं इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई पत्रिकाएं निकाली और उनकी प्रेरणा से समस्त उत्तरी भारत में उनके जीवन काल में ही कितने ही पत्र निकले। भारतेंदु ने कवि वचन सुधा सन 1868 में निकाली, लेकिन जब इस पर सितारे हिंद का प्रभाव पड़ा तो इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन सन 1873 में निकाली। भारतेंदु ने अपने हिंदी प्रेम के कारण पत्रिका के 8 अंक निकलने के बाद ही मैगजीन शब्द को हटाकर हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम रखा। सन 1874 में बाला बोधिनी नामक एक और पत्रिका इन्होंने निकाली। सन 1876 में काशी पत्रिका निकाली। भारत बंधु भी इसी वर्ष निकला। लाहौर से पंडित गोपीनाथ के संपादकत्व में सन 1877 में मित्र विलास निकला, जिसने हिंदी के पक्ष को लेकर भारतेंदु का पूरा पूरा साथ दिया। प्रयाग से 1877 में हिंदी प्रदीप निकला। इसका संपादन बालकृष्ण भट्ट जी ने 1878 में आरंभ किया। 1878 में कलकत्ते के चार सुधा निधि का भी प्रकाशन हुआ। मोहन चंद्रिका 1880 में निकली, इसमें विशेषता भारतेंदु के ही लेख रहते थे। छत्री पत्रिका और आनंद कादम्बिनी सन 1881 और सन 1882 में क्रमशः निकली। कानपुर से पंडित प्रताप नारायण मिश्र के संपादकत्व में ब्राह्मण सन 1883 में निकला और प्रयाग से इसी वर्ष प्रयाग सभाचार निकला। भारतेंदु जी इस समय तक इतने लोकप्रिय हो गए थे कि भारतेंदु नाम से ही सन 1884 में एक पत्रिका निकली। काशी में भारत जीवन भी इस वर्ष निकला। भारतोदय तथा हिंदुस्तान 1885 में निकले। भारतेंदु ने संस्कृत, बांग्ला आदि से अनुवाद भी हिंदी की अभिवृद्धि के लिए किए। उनके मुद्रा राक्षस अनुवाद की सफलता के संबंध में मित्र विलास जुलाई 1882 में जो समालोचना छपी वह महत्वपूर्ण है। इस अनुवाद को पढ़कर उन लोगों को नाक रगड़नी चाहिए जो ऐसे नाटकों की भाषा को पुराने मुहावरों की भाषा के नाम से पुकार कर सरल सरल कहानियों का टूटा फूटा अनुवाद करके ही नाटकों के अनुवादकर्ता बनते हैं। इन पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन से कितने ही हिंदी लेखक उत्पन्न हुए और हिंदी को बहुमत से समर्थन प्राप्त हुआ। मुसलमान और कायस्थों को छोड़कर लगभग सभी ने एक स्वर से हिंदी की समुचित प्रतिष्ठा की मांग की। मित्र विलास ब्रैकेट में 17 अप्रैल 1882 में हरिमुकुंद शर्मा का देश भाइयों से प्रार्थना निबंध तत्कालीन जागरण का सजीव चित्रण उपस्थित करता है। अंग्रेजों के पक्षपात का, हिंदी की उपेक्षा एवं उर्दू के आदर का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया गया है कि धर्म को भाषा के प्रश्न से अलग रखा जाए, फारसी उर्दू नहीं हिंदी को ही सब पढ़ें। भारत भाइयों, यह समय मौन धारण का नहीं है। आजकल जब तक राजा के कान फोड़ फोड़ कर प्रजा का दुख न सुनाया जाए, तब तक राजा की नींद नहीं खुलती। इस समय देश भाषा का आंदोलन करो, जिस जिस स्थान से हो सके सर्वसाधारण को इसका सब विषय सुना के, इसमें उनकी सम्मति ले के, प्रार्थना पत्रों पर उनके हस्ताक्षर करा के, जहाँ तक बन पड़े इसमें यदि कहीं आवश्यकता हो तो यथासंभव धन भी व्यय करके, सरकार अंग्रेज अथवा महामान्यवर रिपन जी अथवा डॉक्टर हंटर साहब के नाम पर अपना अपना प्रार्थना पत्र मेमोरियल भेजो। हे भारतवर्ष की सब आर्य समाजों, ब्रह्म समाजों, हिंदू समाजों, भाषा संवर्धिनी समाजों, धर्म प्रचारकों, विद्या प्रचारकों तथा इतर जनों, इस समय सब जाग उठो। सब एक स्वर से अपनी मातृभाषा के उद्धार के लिए बद्ध परिकर होके सरकार अंग्रेजी सरकार को जताओ कि उर्दू हमारे देश की बोली कदापि नहीं हो सकती। यहाँ सब की बोलियाँ संस्कृत से ही निकली हैं, पर अरबी फारसी का इस देश से कुछ वास्ता ही नहीं है। जो मुसलमान इस देश में रहते हैं वे हमारे ही में से मुसलमानों के राज में हिंदू धर्म को छोड़कर मुसलमान हुए थे। उन्होंने धर्म दिया था ना कि बोली। बोली उनकी भी हमारे जैसी ही है। मुक्ति के लिए चाहे वेद पर विश्वास करो, चाहे अंजील पर, चाहे किसी ग्रंथ पर, परंतु वह जो एक जाति बात है कि भाषा का एक होना, इसमें धर्म का हट करना केवल मूर्खता मात्र है। तत्कालीन एजुकेशन कमीशन को यह विश्वास दिलाने के लिए कि हिंदी ही मातृभाषा है, उर्दू नहीं, कितने ही भाषा विवाद संबंधी निबंध लिखे गए। मित्र विलास 24 जुलाई सन 1882 में हिंदी प्रदीप से उद्धत हमारी भाषा क्या है निबंध में लेखक ने लिखा है कि इन दिनों इस बात की सब ठौर विचार हो रहा है कि इस भारत भूमि की भाषा क्या है। हिंदी का समर्थन करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि शैली में सौंदर्य विदेशी शब्दों को अपनाने से नहीं आ सकता। ग्रामीण और नागरिक भाषा में भेद क्या विदेशी शब्दों के ही बोलने से हो सकता है, तथा क्या संपूर्ण शाइस्तगी शीन काफ के गढ़े अरबी तुर्की शब्दों में ही भर दी गई है। भारतेंदु युग के हिंदी निबंधकारों ने और पत्र संपादकों ने हिंदी पक्ष का बड़े ही प्राणवंत ढंग से समर्थन किया। यदि इस समय उर्दू का विरोध न किया गया होता तो आज आधुनिक हिंदी साहित्य इस संपन्न स्थिति में न होता और हिंदी ना ही राष्ट्रभाषा हुई होती। तत्कालीन सामाजिक दुर्बलताओं को दूर करने की भी हमारे लेखकों ने चेष्टा की। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने व्यंग्यात्मक लेख समझदार की मौत है 1884 के कुछ अंश हैं। सच है, सबसे भले हैं मूढ़ जिन्हें न व्यापय जगत गति। मजे से पराई जमा गपक बैठना, रंडिका देवी की चरण सेवा में तन मन धन से लिप्त रहना, खुशामदियों से गप मारा करना, जो कोई तिथि त्योहार आ पड़े तो गंगा में चूतड़ धो आना, वहाँ भी राह भर पराई बहू बेटियाँ ताकना, पर गंगा पुत्र को 4 पैसे देकर सेत मेत में धर्म मूतर धर्मा अवतार का खिताब पाना। संसार परमार्थ दोनों में तो कोई कसने नहीं आता कि राजा साहब लड़कपन में कैसे थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने अपनी रचनाओं में सोती हुई हिंदी जनता को जगाया, समाज को नवनिर्माण के लिए उसका मार्गदर्शन किया। इनका नारा था, जपो निरंतर एक जवान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। देश में फैली हुई कुरीतियों की ओर सभी विचारकों का ध्यान गया। पंडित हरि मुकुंद शर्मा लिखते हैं, चाहे समय के फेर से, चाहे मुसलमानों के अत्याचार से, अथवा चाहे देश के मंद भाग्य से कहो, पर कुरीतियों ने हमारा देश खा लिया है। कवि वचन सुधा सन 1884 में भारतीय चरित्र और अंग्रेजी राजनीति में है। धन के साथ देश की बुद्धि अनुभूति भी जाती रहती है। सरकार के प्रत्येक प्रकरण में जब उच्च पदों पर यूरोपियन लोग ही नियुक्त हैं, तब तक वे हिंदुस्तान में रहते हैं, उसका धन अनुभव और बुद्धि प्राप्त करते हैं। जब यहाँ से जाते हैं तो अपने साथ ही ले जाते हैं, जिसमें देश का धन बल और बुद्धि क्षीण होती जाती। शिक्षा का प्रसार, मास एजुकेशन। अगस्त सन 1884 के कवि वचन सुधा में प्रकाशित एक लेख का अंश, हमको मिशन वालों की इस कृपा के बदले धन्यवाद देना अत्यंत आवश्यक है, किंतु उनकी शिक्षा में एक दोष विशेष यह रहा कि उनका हमको शिक्षा देने का मुख्य अभिप्राय यह है कि हम लोग स्वधर्म को त्याग उनके धर्म में चले जाएं, ना यह कि हमारी और प्रकार की उन्नति हो। देश की भलाई के लिए भारतेंदु युग के साहित्यिक कितने आतुर थे और कितने सचेष्ट, इसका प्रमाण कवि वचन सुधा 23 फरवरी 1885 में प्रकाशित पश्चिमोत्तर देश में रेल यात्रा की निम्न पंक्तियों से भी मिलता है। क्यों लोग इतने महाकष्ट भोगने पर भी ऐसे न्यायशील सरकार के समीप अपने दुखों का निवेदन नहीं कर सकते? क्यों वे राजकर्मचारियों अथवा रेलवाइयों से इतना भय खाते हैं? इनका कारण मेरी अल्पबुद्धि में यही आता है कि साधारण शिक्षा मास एजुकेशन का इस देश में अभाव है। मुख्य कर्तव्य सब समाजों को, चाहे आर्य थियोसोफिस्ट हिंदू अथवा कोई समाज क्यों ना हो, वरन हिंदुस्तान के मुसलमान ईसाई और बौद्ध कोई जाति क्यों ना हो, यह है कि एक चित्त होकर अपने देशवासियों के भलाई की चिंता करें, विशेषकर द्रव्य संबंधी अभाव की, जो कि उन्नति की मुख्य बाधा हो रही है। भारतेंदु और उनके युग के साहित्यकारों ने हिंदी की बहुमुखी उन्नति की, निबंध नाटक काव्य अनुवाद आदि। हिंदी भाषा न संस्कृत प्रधान रह गई और न उर्दू प्रधान। इसमें प्रचलित अंग्रेजी फारसी के शब्द प्रयुक्त किए जाने लगे। हरिश्चंद्र मैगजीन में भारतेंदु ने लिखा है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873। भारतेंदु की भाषा विशेषता अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा की सामान्य जन भाषा से संपर्क है। उनके संवाद इसलिए जीवंत हैं, पॉलिसी, डिसलॉयल्टी, पुलिस फरियाद, रिश्वत, कोतवाल, ख्वारी आदि के प्रयोग से नाटक रंगमंच की प्रेषणीयता बढ़ गई है। भारतेंदु ने बोलचाल की भाषा को साहित्यिक बनाकर नई दिशा दी।